संयमी पुरुष अपने को तो तारता है लेकिन अपने संपर्क में आने वालों को भी तारता है। ऐसे पुरुषों के लिए वैदिक काल में राजे महाराजे सब कुछ करने को तैयार हो जाते थे। भगवान राम के पिता दशरथ वेद व्यास जी के लिए सोने का सिंहासन बनाए, महापुरुष आए बैठे। एकनाथ जी महाराज के पास चांदी का झूला था बड़ा भारी। मूर्ख लोग सोचते थे कि यार संत ने ओड़ी चांदी ना झूला में झूला नहीं जरूर सूचे, नहीं उनको तो इच्छा नहीं है, लेकिन उन महापुरुषों से न जाने कितने कितने लोगों की जिंदगियां सुधरी है और एक एक चांदी का रुपया भी गिनो एक एक आदमी के पीछे तभी भी उनके पास इतनी इतनी चांदी है वो बिल्कुल कम है। मेरे पास कुछ लोग आए मेरे को कहा कि बापू शोभा यात्रा निकालने की आज्ञा दो, मैं क्या नहीं बोले बापू पूरे कडोली गांव की इच्छा है फलानी इच्छा है, मैं क्या नहीं खोटा खर्चा मत कर। बोले हमारी खर्चो शू जीपना बसो 500 रुपया के कतार गांव वाला ने मैं ना पाड़ी थी शोभा यात्रा के कीर्तन यात्रा ना काटो खोटो खर्चो ना करो के बापू मैं कहीं खोटो नहीं। मेरे को पुरानी बात याद आई, इंदिरा जिस समय प्राइम मिनिस्टर थी उसका दौरा हुआ गुजरात में तो महेसाणे में आना हुआ तो महेसाणा के लोगों ने कार्यकर्ताओं ने उनके लिए ठहरने का कुछ बंदोबस्त किया तो वहां के कार्यकर्ताओं ने कहा कि स्वामी जी हमने 40,000 रुपए खर्च किए इंदिरा जी के हाथ पैर धोने के लिए बाथरूम के लेकिन उसको टाइम ही नहीं मिला हमारे 40,000 एक लोटा पानी का अगर ढोल के जाती अरे एक दो बूंद पानी की फेंक जाती तो भी हम समझते कि हमारा बाथरूम बनाना स्वार्थक को गया। इतना इतना फालतू खर्चा होता है एक लोटा क्या एक कुल्ला पानी कर जाती तो भी समझते कि मेहनत वसूल। हम सोचते हैं कि राजे महाराजाओं की हम कितनी कितनी उनकी सिक्योरिटी की दूसरी तीसरी कितनी कितनी व्यवस्था में खर्च करते हैं और जो हमारे जीवन को विकारों से विषयों से रोगों से बीमारियों से पीड़ाओं से अशांति से बचाकर केवल इस लोक में नहीं परलोक में नहीं लेकिन लोक लोकांतर से पार ब्रह्म स्वरूप परमात्मा तक ले जाने की यात्रा कराते उनको हम क्या दे रहे हैं? नगण्य है जो कुछ उनके लिए हम करते नगण्य है कुछ भी नहीं है। सरिता जब बहती हुई हरिद्वार आती तो लोग देखते कि गंगा का कितना मान है कितनी पूजा हो रही है लेकिन उन लोगों को ये भी समझना चाहिए कि गंगा हरिद्वार पहुंची तो कितने सारे कष्ट सहती हुई झेलती हुई तब हरिद्वार होकर हरिद्वार में गंगा होकर पूजनीय होती है। पहले तो वो सागर से तप्त किरणों के द्वारा उठाई गई फिर बादलों में टक्करें लेती 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 वो पहाड़ों पर जा गिरी और कई महीने पड़ी रही और फिर सूर्य के किरणों ने उसको तपाया बाद में वो झरने होकर बही और फिर महाराज कई चट्टानों से कई पेड़ों से कई पौधों से किलकिलाहट चिलचिलाहट करती हुई रास्ता काटती हुई टक्करें सहती हुई रातें और दिन को यात्रा करती करती बड़े कई दिनों से कई महीनों से उसकी तपस्या चालू है तब वो गंगा हरिद्वार में गंगे मात होके पूजी जाती है। ऐसे संत न जाने किसी कई जन्मों के और इस जन्म में कई उपासना और साधना की तब अब संत भगवान होके पूजे जाते लेकिन उनका संत बनने में कितना परिश्रम है। मिट्टी का घड़ा पका है उसमें पानी डालते घड़े का आदर करते स्वस्तिक बनाते लेकिन उस स्वस्तिक से पूजा जाता है या घड़े में शोभा देता है पानी भरा हुआ घड़ा शोभा देता है या घर वालों की सबकी नजर उस घड़े पर जाती है लेकिन सबको आकर्षित करने का उसमें शक्ति कब कैसे आई? वो कुम्हार के द्वारा उठाई गई मिट्टी पैरों के द्वारा रौंदी गई चाक पे चढ़ाई गई ताप में तपाई गई धूप में सुखाई गई बाद में निभाड़े में तपाई गई और इतना नहीं निभाड़े में तपने के बाद कुम्हार ने टकोरा मार के निकाला फिर मिसेस कुम्हार ने जब माल दूसरी जगह रखा तब चेक किया जब मिसेस कुम्हार मिस्टर कुम्हार के टकोरे खाए इतना ही नहीं जब बाजार में आया तो खरीदार ने एक घड़ा लेना है उसने चार घड़ों को दे मारा जयराम जी की और उसमें से एक आधा घड़ा लिया ऐसे तो कई बार उस घड़ों ने टकोरे सहे। बाद में ग्राहक ने एक घड़ा लिया, वो घर ले गया। घर ले गया तो पत्नी पूछती कि कितलानू लाया, वगाड़ी ना आयो छे, छता एने वगाड़वानु मन थाय छे, बापड़ो सहन करे। नौकर से, सेठजी कितने का लाया? बोले 5 रुपए का। अच्छा, नौकर अपने असिस्टेंट को बोलता, जा घड़ा धो के आ। असिस्टेंट भी चुप नहीं रहता, वो भी तब कहीं घड़ा आदमी का आकर्षण केंद्र बनता है। ऐसी ये देह रूपी घड़ा में परब्रह्म परमात्मा रूपी अमृत भरने के लिए गुरुओं के टकोरे, माता पिता के टकोरे, धर्म शास्त्र के नीति नियम के टकोरे सहते 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 जब ये साधक सिद्ध बनता है तो बोले, अरे बाप जी का तो बड़ा वट है, बाप जी को राजे लोग मानते हैं, देवता लोग मानते हैं। अरे वाह वाह वाह, संत का, संत बनने में बहुत मजा है। कर लिया संत का वेश, लेकिन अपने को तो कोई पूछता नहीं, क्योंकि तुम उस प्रोसेस से नहीं गुजरे। नारायण 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 नारायण, और क्या, सीधी तो बात है। अच्छा, तो वो प्रोसेस कैसा है? कठिन भी नहीं है, अटपटा भी नहीं है, असंभव भी नहीं है। केवल ये है कि जो हमारा मन संग्रह में लगा है, जो हमारा मन मोह में लगा है, जो हमारा मन संसार की नश्वर चीजों में लगा है, उस मन को ये समझा दें कि नश्वर चीजें जितनी भाग्य में होगी शरीर उतनी रहेगी, बाकी का खामखा का चिंतन है। और नश्वर संबंध कितने भी संभालो, एक दूसरे को छोड़ के चले जाएंगे। तो उन संबंधों से भगवान के नाते काम करो, और भगवान को, अपना आत्मा परमात्मा को प्यार करते हुए उसके विषय का ज्ञान प्राप्त करो। यहाँ का श्लोक आज का है, संपूर्ण मनुष्यों की जो रात्रि है उसमें संयमी मनुष्य जगता है। जिस संपूर्ण जीव जिसको रात्रि समझते हैं, कुछ नहीं, आत्म क्या, परमात्मा क्या, आत्मज्ञान क्या, जिसके विषय में पता नहीं, अज्ञात है, उसको वो ज्ञानी ठीक से जानता है। और जिसमें राग में, द्वेष में, मेरे में, तेरे में संसारे लोग पक्के होशियार है, उसमें ज्ञानी भूला रहता है। तो राग द्वेष करके सुनाए जा रहे थे कि बाबा मुफ्त का खा के मोटा हो गया, ऐसा हो गया, लेकिन बाबा तो अब निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तुकारा से बोलते, बोले यार की मौज, अभी भाला भोंक देंगे, बोले यार की मौज, तलवार देखता है चम चम चमक रही है, सिर काट के फेंक देंगे, निकल बार फलाने के, बोले यार की मौज। वो उबल रहे लेकिन बाबा को कोई असर नहीं होती। जयराम जी की, क्यों भाई? दलदल में, कीचड़ में गंदे जीव जीवड़े भी होते हैं और सुंदर कमल भी होता है। ऐसे संसार के दलदल में, निशा में रमने वाले, तुच्छ जीवन जीने वाले भी जीव होते हैं, और संसार रूपी कीचड़ में होते हुए भी संसार के प्रभाव से पार जल कमलवत कोई ब्रह्मज्ञानी संत भी तो होते हैं। है तो वही संसार। आखिर बाबा को नादों के बाहर निकलना है। अब प्रकृति ने करवट ली, वो मूर्ख लोग कहीं गलती न कर बैठे, वो प्रारब्ध महापुरुष का ऐसा है नहीं, यहाँ मृत्यु का या कुछ। वो महाराज तो निर्भीक होके बाहर निकले, उसके पहले राजा की एकाएक नींद खुल गई। खिड़की से देखा शोर बकोर हो रहा है और भाले दिखा रहे, तलवार दिखा रहे। राजा चिल्लाया कि ठहरो ठहरो, क्या हो रहा है? भागता हुआ आया, देखता कि महात्मा तैर रहे हैं और वो लोग चिढ़ रहे। बाबा को पूछा, कहां से आए महाराज? बोले यार की मौज। ये क्या कर रहे? बोले यार की मौज। महाराज ये किसका है? बोले यार का है, यार की मौज। राजा तो आखिर साधारण आदमी से तो राजा बुद्धिमान होता ही है। वो साधारण आदमी तो बड़बड़ाहट कर रहे थे, राजा ने देखा कि कोई साधारण फकीर नहीं है, ये तो यार की मौज में ऐसा रंग गया कि यार ही यार दिख रहा है। महाराज इन मूर्खों को क्षमा कर देना, यार की मौज। महाराज आप नाराज मत होना, यार की मौज। उनको तो यार की मौज की, यार के सिवा कुछ दिखता नहीं, तो राजी नाराजी क्या? महात्मा बाहर आए, राजा उनकी अर्घ्यवाद से पूजा करता है, उस समय भी वही शांति, और मूर्ख उनको कुछ का कुछ सुनाते, उस समय भी हृदय में वही की वही शांति। मूर्ख पाप ले जाते हैं और धर्मात्मा सेवा करके पुण्य ले जाता है, लेकिन महात्मा पुण्य और पाप दोनों से न्यारे रह जाते हैं। पर ब्रह्म परमात्मा जैसा अमृत तैसी विष खाटी, जैसा मान तैसा अपमाना, हर्ष शोक जाके नहीं वहरी मित समान, कह नानक सुन रे मना मुक्त ताही ते जान। पशु पक्षी पेट भरने में बच्चा पैदा करने में जागृत है, वो भी चतुर है, लेकिन पशु पक्षी आज का खा लेते हैं, कल की फिक्र नहीं करते। मनुष्य अगर आत्मज्ञान नहीं पाता तो पशु पक्षियों से भी ज्यादा दुखी रहता है बेचारा। अगर आत्मरस मनुष्य के जीवन से निकाल दिया जाए, आत्म समझ निकाल दिया जाए, तो मनुष्य पशु पक्षी से भी ज्यादा घाटे में, क्योंकि पशुओं को पक्षियों को नो इनकम टैक्स, नो सेल टैक्स, नो सरचार्ज, नो जमाई प्रॉब्लम, नो दीकरी प्रॉब्लम, नो दहेज प्रॉब्लम, नो पोता प्रॉब्लम, नो पोती प्रॉब्लम, नो दोता प्रॉब्लम, नो दोती प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं रहता पशुओं को पक्षियों को। फिर भी पशु पक्षियों से मनुष्य श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि मनुष्य में वह स्मृति है जो अपने स्मृति जहां से आती है उस स्मृति दादा को पहचानने की शक्ति मनुष्य में है, पशु में नहीं। सत्संग सुनने की क्षमता मनुष्य में है, पक्षियों में नहीं है। लोक लोकांतर की यात्रा करने की क्षमता पशु में नहीं है, मनुष्य में है। नरक और स्वर्ग का ज्ञान समझना और पाने की और उनसे ऊपर उठने की क्षमता मनुष्य में है। कुछ इस्लामी फकीरों ने रबिया से पूछा कि तू खुदा की बंदगी क्यों करती है, क्या तुझे बिस्त जाना है? बोले खुदा करे कि अगर मैं बिस्त के लिए खुदा की बंदगी करती तो मुझे बिस्त कभी न मिले। तो क्या दोजख से बचने के लिए खुदा को रिझाती है? बोले अगर दोजख से बचने के लिए भगवान का भजन करती हूँ तो मुझे भगवान दोजख में ही डालना। मैं दोजख से बचने के लिए, नरक से बचने के लिए भजन नहीं करती और स्वर्ग में जाने के लिए भजन नहीं करती, मैं तो वो प्यारा है, उसको प्यार किए बिना मुझसे रहा नहीं जाता, इसलिए मैं उसका भजन करती हूँ, भजन करने योग्य है। अगर भगवान का भजन नहीं करेगा तो काम का भजन करेगा, धन का भजन करेगा, रुपए का भजन करेगा, ईगो का भजन करेगा, अपने को सजाने का भजन करेगा। और जो आदमी अहम को पुष्ट करके सुखी रहना चाहता है वो अंदर में घबराता रहता है। अहम की खुशामत हुई, थोड़ी देर के लिए आर्टिफिशियल सुख मिला, फिर जहां अहम की खुशामत कम हो गई या नहीं हुई वहां फिर दुख चालू हो गया। लेकिन जो सचमुच में भगवान का भक्त है उसकी वाह वाह होती तो भी उसको असर नहीं, और उसकी निंदा होती तभी असर नहीं। वो झंझट प्रूफ, निंदा प्रूफ, अपमान प्रूफ और मान प्रूफ होकर बर ब्रह्म परमात्मा जैसे मान हानि से पर है, ऐसे भगवान का प्यारा साधक और भक्त भी धीरे धीरे अभ्यास करके मान और हानि से, मोह और माया से पर हो जाता है। छठा दिन हुआ है, पुतना विष ले आई स्तन में, कृष्ण को क्रोध नहीं और द्वेष नहीं। शिशुपाल 100 गालियां देता है, कृष्ण के चित्त में चोट नहीं। व्यवहार के लिए जो कुछ करा है करते हैं, लेकिन कृष्ण का चित्त उद्विग्न नहीं होता। सोने की द्वारका डूब रही है, बेटे आपस में युद्ध करके सब समाप्त हो रहे, कृष्ण के हृदय में चोट नहीं होती। ये तो माया के बुलबुले पैदा हुए, माया में लीन हो जाएंगे। मृत्यु भी कैसी हुई, समाधि करके नहीं, सोने की द्वारका में बैठ के नहीं, जंगल में ऐसे बैठे और शिकारी ने मृग समझा और दे मारा बाण श्री कृष्ण के चरणों में। शिकारी ने देखा कि मृग लेने जाता हूँ, देखा कि मृग तो नहीं, ये मृग नहीं कन्हैया है। ओहो गलती हो गई, क्षमा करना। बोले कोई बात नहीं, ऐसी नियति थी, तू मौज कर। श्री कृष्ण अपने इंद्रियों को मन में, मन को बुद्धि में और बुद्धि को अपने स्वस्वभाव में लीन करके महाप्रयाण कर लेते। आय आय करके चिल्ला कर उसको श्राप देकर या गाली देकर नहीं रवाना हो रहे, कहराते हुए नहीं, हंसते हंसते आए, हंसते हंसते युद्ध में और सब काम में हंसते हंसते जिए और हंसते हंसते गए। और वो सिखाते हैं कि तुम्हारे जीवन में दुख का कोई स्थान नहीं है, चिंता और भय का स्थान नहीं है, मोह का स्थान नहीं, लेकिन तुम निशा में होते ना, जैसे रात्रि में तुमको ठूंठे में चोर दिखता है, रात्रि में रस्सी में सांप दिखता है, रात्रि के समय में जो हितेशी है वो भूत जैसा दिखता है, और जो चोर डाकू है वो अपना जैसा भी दिखता है अंधकार में। ऐसे ही काम, क्रोध, लोभ, मोह ये चोर है, लेकिन काम में सपोर्ट करने वाले तुमको, क्रोध में सपोर्ट करने वाले तुम बराबर हो। ये ठीक किया, इसको डांटो मारो, ठीक किया। तुम्हें जो विकारों में पोषते हैं अथवा तुम्हारी गलती में जो भागीदार होते हैं ऐसे मित्रों से तुरंत सावधान हो जाओ। तुम्हारी गलती को जो स्पष्ट बता सकते हैं, तुम्हारे ईगो को जो पोषते हैं ऐसे खुशामत खोरों से सावधान रहो। लेकिन तुम्हारे ईगो को जो तोड़कर भगवान के तरफ ले जाते उनके चरणों में तो अनकंडीशनल सरेंडर होते जाओ, इसी में तुम्हारा भला है। बार बार वहां जाओ जो तुम्हारा अहम तोड़कर परमात्मा के साथ तुम्हारे मन को जोड़ना चाहते उनके साथ जाओ। गीता में एक श्लोक आता है, न अतिमानिता, अतिमान की इच्छा ना रखो। जहां मान छोड़ना है, अहम छोड़ना है, उस जगह पर भी कई लोग मान की इच्छा रखते। मान पुड़ी है जहर की, खाए सो मर जाए, चाहे उसी की राखता वो भी अति दुख पाए। एक सेठ ने ऐसा नौकर रखा था जो सेठ को खरी खोटी सुना देता था। एक बार वो सेठ अपने वेवई के साथ कपड़े की फर्में थी, होलसेल के दुकान थे, रिटेल के दुकान थे, अपने एक फर्म में गया जहां रोज जाता था पहले दोपहर के 2 बजे वेवई के साथ। साधारण नौकर जो बुहारी देता था उसने सेठ को सुनाई खरी खोटी, हम लोग तो 9 बजे आ जाते और आप 2 बजे आते, हम कमाए और तुम मुफ्त का खाओ, कब तक चलेगा ऐसा काम? सोते रहते हो क्या? दिन को सोने से बीमारी आती है और आयुष नाश होता है। क्या सो रहे थे कि घूम रहे थे? मेहमान आए तो मेहमान से मिलके आ जाना सही टाइम सर। लक्ष्मी आवे तो क्या है, लक्षण तो नहीं जाने चाहिए। ऐसा सुनाए महाराज वो वेवाई देखने लगता है कि ये कौन है। सेठ से पूछता है, ये किरा है, ये तुम्हारा कौन? बोले ये हमारा दुकान का नौकर है। बोले नौकर? हाँ। कितना पगार इसका? बोले इसका पगार तो 25-30 रुपया होगा। वो इसका पगार काम करने का तो उतना ही है थोड़ा सा, लेकिन बाकी लोगों के सामने भी मेरे अहम की धुलाई कर सकता है, इसलिए उसको 1,000 रुपया एक्स्ट्रा भी देता हूँ। बोले क्या करते हो? बोले सब सेठ जी करते सलाम, वाह भाई वाशु, वाह भाई वाशु, वाह भाई फलाना, वाह भाई फलाना, वाह भाई फलाना, वाह भाई फलाना। में उम्र पूरी थी बिंदी, सिंधी में चौणिया, चरीरन भूडे में खुश, तो विवाह करने वालों के बीच तो मैं जी रहा हूँ, इससे तो मेरा अहम बनेगा, इससे तो मेरी गलतियां बढ़ेगी, इससे तो मेरा जन्म मरण नहीं मिटेगा, इसलिए मैंने एक नौकर ऐसा रखा है कि संत के पास तो मैं नहीं जा सकता हूँ, तो कम से कम निर्भीक होकर मेरे को घड़ सके ऐसे आदमी को मैंने रखा है, और ये मेरे को झूठ से बोलता है, इसलिए इसकी मैं कीमत करता हूँ और इसको मैंने पगार एक्स्ट्रा ज्यादा। वो अपने आध्यात्मिक तंदुरुस्ती के लिए ऐसे लोग भी रखने वाले रखते थे। आप लोग ऐसा आदमी रखो, ये मेरे सलाह नहीं, लेकिन कम से कम ऐसे लोगों के पास जाओ जो तुम्हारी गलती तुमको सामने सुना दे। अपमान के वक्त आप देखो अंदर क्या होता है, मीठा मीठा गप और खड़ा खट्टा चट, ये तो भाई सब करते हैं। मीठी जलेबी देखकर तो पूंछ भी कुत्ता पूंछ ही लाता है, डंडा देखकर पूंछ सीधी कर देता है। मनुष्य तो ऐसा किया तो फिर मनुष्य उनसे आगे कैसे निकलेगा? सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता। सुख आए तो भूल न जाना, दुख आवे तो ना घबराना, क्योंकि आने वाले और जाने वाली चीज है, इसमें आप मत जगो। आने वाले और जाने वाली चीजों में चिपको मत, लेकिन आने और जाने वाली चीजों को जो देख रहा है उस परमात्मा में जागो, तो तुम मुनि हो जाओगे। जो मनन करके आत्म परमात्मा को पा लेता है, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, जो संयमी है अर्थात जो आत्म परमात्मा तत्व का चिंतन करता है, अपने मन को इधर उधर की खटपट से बचा के संयम करता है, ऐसा संयमी, उसमें अभी जीव भाव है, अभी वो करता है, वो संयमी जब परिपक्व होता है तो फिर तस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुने, फिर वो मुनि बन जाता है, जिसमें दूसरे लोग, जिसमें संसारी लोग जागृत है, उस जागृत को मुनि रात्रि देखता है, अर्थात वो दृष्टा हो जाता है। लोगों की रीत भात का, लोगों की खरे खोटे का वो दृष्टा हो जाता है। अब वो जीव नहीं रहा, वो अब संयमी नहीं रहा, वो बेसंयमी भी नहीं रहा। बेसंयमी तुच्छ जीवन है, संयमी ऊंचा जीवन है, लेकिन जब संयम है तो संयम जीव का होता है। वो अब जीव भाव से भी पार गया और भोगी भाव से भी पार गया, वो पश्यतो मुनय है, वो मुनि हो गया। अब उसके द्वारा राज्य भी हो सकता है, उसके द्वारा धंधा भी हो सकता है। ऐसे कोई ब्रह्मज्ञानी है धंधा भी कर सकते हैं, ऐसे कोई ब्रह्मज्ञानी जो घर भी चला सकते हैं, ऐसे ब्रह्मज्ञानी है जो युद्ध खेल सकते हैं, ऐसे ब्रह्मज्ञानी जो पागल का वेश बनाकर भी जी सकते हैं। अब उन महापुरुषों को सारा संसार साक्षी भाव से वो देखते रहते और आगे चलकर साक्ष और साक्षी भाव भी नहीं रहता, वो ऐसी अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। तस्य तुलना के न चाहते, उस पुरुष का दर्शन अमोघ होता है। ऐसे पुरुष के दर्शन के लिए शास्त्र कहते कहता है कि गीताया श्लोक पाठेन गोविंद स्मृति कीर्तनात् साधु दर्शन मात्रेन तीर्थम कोटि फलम लभेत।